ही जाते भये अर्हंता दिमगा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूंढे सतत केवल ज्ञान पाने पूजूंढे सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम लोग अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं और निरंतर उसी बात का विचार कि हमारा जीवन कैसे अच्छा बने, वैसा ही आचरण जिससे कि हमारा जीवन अच्छा बने, हम निरंतर दोनों बातों को जीवन में अंगीकार करने के लिए विचार कर रहे हैं। शावक के लिए और साधु के लिए, दोनों के लिए मोक्ष मार्ग में समता का उपदेश दिया गया। शावक समता भाव रखने का अभ्यास करता है, साधु जन निरंतर समता भाव की साधना करते हैं। उस समता भाव रखने को ही अपन सामायिक कहते हैं। सो शावक के लिए सामायिक एक शिक्षा व्रत के रूप में आचार्यों ने उपदेशित किया है। सामायिक में हमें किस तरह अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहिए, इस पर अपन विचार कर रहे हैं। वास्तव में सामायिक हमारे विचारों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। नाना प्रकार के शुभ और अशुभ विचार हमारे मन में आते रहते हैं। हम सामायिक के द्वारा ऐसा अभ्यास करते हैं कि हमारे भीतर उठने वाले अशुभ विचार कम से कम उठें और शुभ विचारों में ही हमारा मन लगा रहे। सुबह दोपहर शाम शावक अभ्यास करता है शुभ विचारों को बनाए रखने का। मुनिजन तो निरंतर शुभ विचारों को बनाए रखने की साधना करते हैं। दोनों का लक्ष्य शुभ नहीं है, दोनों का लक्ष्य तो शुद्ध ही है। सो ऐसे शुद्ध लक्ष्य को ध्यान में रख करके शुभ और अशुभ विचारों में से शुभ विचारों को निरंतर बनाए रखते हैं। उनकी एकाग्रता, उनकी तन्मयता इन्हीं शुभ विचारों में रहती है। सो जो व्यक्ति ऐसे सामायिक का अभ्यास करता है वो मानो तन्मयता का अभ्यास कर रहा है, एकाग्रता का अभ्यास कर रहा है। भीतर में दृढ़ता शुभ विचारों के प्रति अपने आप आती चली जाती है, क्योंकि हम उन क्षणों में जबकि हम सामायिक कर रहे हैं निरंतर शुभ ही चिंतन करते रहते हैं और उस शुभ चिंतन का अपने जीवन पर प्रभाव ये पड़ता है कि विचार जो अच्छे हैं वो दृढ़ हो जाते हैं। जिन विचारों को अपन निरंतरता देते हैं वे ही विचार दृढ़ हो जाते हैं। हमारी इच्छा शक्ति कि हम अपना जीवन को अच्छा बनाएं। ये इच्छा शक्ति हमारे भीतर जागृत हुई, उसके लिए हमने निरंतरता दी और सामायिक का अभ्यास किया, जिससे हमारे भीतर दृढ़ता आएगी और उस दृढ़ता के चलते हम अपने स्वभाव को, अपनी आदतों को बदलने का अभ्यास कर सकते हैं। सामायिक अपने आदतों को बदलने के लिए भी हमारी मदद करती है। स्वभाव को तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन आदत भी एक तरह का अपना स्वभाव ही बन जाती है। हैबिट इज द सेकंड नेचर। जो अपने जीवन में अपनी आदतें बन जाती हैं, उनको अपन यही तो कहते हैं कि भैया अब उनको स्वभाव ही ऐसा है। स्वभाव मतलब उनका आदत ही वैसी है। वैसे तो आत्मा का स्वभाव भी इतरागता है, वो तो बदलता नहीं है, लेकिन हम जिस तरह की आदतें बना लेते हैं, फिर हमें उनको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो अपनी आदतों को जो हमारे जीवन को पतन की तरफ ले जाएं, हम उन्हें कमती करते जाते हैं और हमारे धर्म ध्यान के लिए जो अनादिकाल से हमारे आदत नहीं है, हमारी तो संसार के भौतिक सुखों में ही सुख मानने की आदत है। आत्म सुख ही सच्चा सुख है, ऐसा अपन को एहसास ही नहीं होता। सो अपन जुटाते निरंतर भौतिक सुखों को ही है, आत्म सुख के जुटाने के लिए अपन ने कोई आदत ही नहीं डाली। क्रियाएं जरूर दोहरा लेते हैं अपन, लेकिन मन के भीतर स्थिति यथावत बनी रहती है, हमारी आदतें नहीं बदलती। बड़ा आश्चर्य लगता है कि भगवान का अभिषेक किया, भगवान की पूजन करी, लेकिन दुकान पर बेईमानी भी करी। भैया क्या हुआ? सीखना चाहिए था कि मैंने इतनी सामायिक करी, इतना स्वाध्याय करा, इतनी पूजा पाठ किए, मुझे इसका फल तो मिलना चाहिए था। इसका फल यही है कि मेरे जीवन में ईमानदारी आवे, अच्छाइयां आवे और बुराइयां दूर हो गई। सो मेरे इस अभ्यास में अभी कमी है। मैंने वाह्य में अभ्यास तो कर लिया है, लेकिन अपने विचारों को, अपनी आदतों को बदलने का अभ्यास नहीं किया। वह भी सामायिक हमें सिखाती है कि हम धीरे धीरे अपने आदत को बदलें। विचार तो ऐसे हैं, भैया यशपाल जी थे, अब तो नहीं रहे, गांधी जी के तीन शिष्यों में से यशपाल जी का भी नाम आता है, जैन थे। उन्होंने अपना संस्मरण सुनाया था कि महाराज जब मैं गंगोत्री गया, जहां से कि गंगा निकली है, उसके उद्गम पर खड़े होकर के बड़ा मनोरम दृश्य में देख रहा था और अचानक मेरे मन में विचार आया कि अगर इस पतली सी धारा में एक कण भी अगर विष का डाल दिया जावे तो जितनी धाराएं बाद में निकली हैं इससे, वो सब विषाक्त हो जाएंगी। सो ऐसे ही तो हमारे भीतर विचार हैं, हमारे मन में जिस तरह के विचार आएंगे, उसकी जो कर्म धाराएं हैं, हमारे आचरण को वैसे ही प्रभावित करेंगे। अगर हम अपने विचारों में अशुभपना लाते हैं, तो हमारी क्रियाओं के शुभ होने के बाद भी हमें उतना लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे मन में तो अशुभ विचार हैं। आचार्य भगवंत इसीलिए तो कहते हैं कि चाहे जितनी शुभ क्रियाएं करो, दृष्टि की निर्मलता नहीं है तो क्या काम की। पहले दृष्टि की निर्मलता कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अनादि काल से मिथ्या से ग्रसित हमारी आदतें हैं, हम वो आदत छोड़ें और विवेक पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अपना आचरण करें। यही तो सामायिक हमें सिखाती है। हम इसी का तो अभ्यास सामायिक में करते हैं, करना चाहिए। दूसरी चीज, कि जिसके जैसे विचार होंगे उसकी वैसी प्रतिक्रिया होगी। विचारों में बड़ा आग्रह है अगर कि मैं जो कह रहा हूं वही सच है, अगर ऐसा आग्रह है तो प्रतिक्रिया भी नेगेटिव होगी, पॉजिटिव हो नहीं सकती। सो दूसरे नंबर पर सामायिक हमें सिखाती है कि हम सौहार्दपूर्ण प्रक्रिया करें या कटुतापूर्ण प्रक्रिया करें, यह हमारे ऊपर निर्भर है। अगर हमारे विचारों में हटाग्रह होगा तो हमारी प्रतिक्रिया कटुतापूर्ण ही होगी, लेकिन हम निराग्रही दृष्टि से हर चीज का विचार करें, सबके कल्याण की भावना हमारे भीतर में है, विचार हमारे भीतर में है, तो प्रतिक्रिया तो सौहार्दपूर्ण ही होगी। सबके भले के लिए ही हम कुछ भी करेंगे उसमें ध्यान रखेंगे। शिवाजी के गुरुजी का नाम रामदास था। सो एक बार ऐसा हुआ कि रामदास को प्यास लगी, वो खेत के सामने से गुजर रहे थे, सो वहां पर उन्होंने गन्ने लगे हुए थे, सो देख करके प्यास बुझाने के लिए दो चार गन्ने तोड़ करके खा लिए। वो गन्ने खाई रहे थे, इतने में उस खेत का मालिक जो किसान था वो उसने देख लिया सो वहीं पर पड़े हुए गन्ने से दो चार गन्ने पीठ पर जमा दिए रामदास जी के। कुछ नहीं कहा उन्होंने, गलती तो थी कि हमने बिना पूछे तुम्हारे खेत में से गन्ना लाए। और यदि अपने मन में अपनी गलती स्वीकार करने का भाव नहीं होता तो क्या करते अपन, लड़ते कि नहीं मैंने तो जो किया है ठीक किया। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा कि गलती तो मेरी है, अगर मुझे दंड मिलता है तो ठीक है। और रामदास चुपचाप वहां से मार पीट खा करके और चले आए। लेकिन लोगों ने देख लिया, लोगों ने शिवाजी से जाकर के निवेदन किया कि आपके गुरुजी को गन्ने खाने की वजह से उस खेत के मालिक किसान ने पीटा है। शिवाजी को क्रोध आ गया, उन्होंने कहा कि बुलाओ उस किसान को जिसने मेरे गुरुजी को गन्ने से पीटा, दो चार गन्ने के पीछे हम पैसे दे देते। सो किसान जैसे ही आया और रामदास जी तो दरबार में शिवाजी से पास में ही बैठे थे, सो उनको देख करके थर थर कांपने लगा, जैसे महाराज सुना रहे थे कि रामचंद्र जी को देख करके वो ब्राह्मण कपने लगा कि अब तो पड़ी पिटाई। तो ऐसे ही अरे इन्हीं रामदास जी को तो मैंने गन्ने से कल पिटाई करी थी, ये तो सामने बैठे हैं, शायद इसीलिए मुझे बुलाया गया है, अब तो दंडित किया जाएगा। सो शिवाजी ने भी कहा कि क्यों तुमने मेरे गुरु जी को पिटाई करी। उसने कहा मालिक क्षमा करें, मुझे मालूम नहीं था कि आपके गुरु जी हैं, मेरे खेत में से गन्ना चुराया था, सो मैंने चोर समझ करके पिटाई करी, मुझे क्षमा करें, जो दंड हो सो वो देवे, मैं स्वीकार करता हूं दंड लेने के लिए। शिवाजी ने कहा कि तुम्हें दंड तो मिलेगा। इससे पहले कि शिवाजी उसे दंड दे, रामदास खड़े हो गए, बोले शिवाजी तुम्हें दंड देने का अधिकार नहीं है, अपराध तो मेरे प्रति हुआ है, मैं ही इसे दंडित करूंगा। अरे वो बहुत अच्छी बात है, शिवाजी ने कहा कि गुरुजी आप ही दंडित करो। तो रामदास जी बोले कि शिवा अगर इस किसान को दंडित करना चाहते हो तो दंड स्वरूप इसको 5 गांव दे दो। अरे दंड में 5 कोड़े तो दुनिया लगवा दी, लेकिन जो तो उपकार हो गया, दंड थोड़ी हुआ। ऐसा शिवाजी के मन में आया तो रामदास जी ने कहा कि देखो अगर वो गरीब नहीं होता तो 4-5 गन्ने किसी के खा लेने पर क्यों क्रोधित होकर के उसकी पिटाई करता। वह आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उसे तुम 5 गांव दे करके आर्थिक रूप से संपन्न करो, ताकि अपने खेत के सामने से निकलने वाले किसी प्यासे को वो आराम से और गन्ना खिला सके, रस पिला सके। एक प्रतिक्रिया ऐसी भी है और दूसरी प्रतिक्रिया वही है कि हम अपराध किया है तो उसका दंड देंगे। भाई सामायिक संसार की बात अलग है, अपन सामायिक का अभ्यास सीख रहे हैं। सुगुणा भागने लगी उन्हें तर्क करियो, सामायिक में तो हिंसा से मैत्री की तरफ, ईर्ष्या से हर्ष की तरफ और दया करुणा की तरफ बढ़ने का ही विचार है। प्रतिक्रिया करेंगे भी तो दूसरे के गुण देख करके हर्षित होने की प्रतिक्रिया करेंगे, करते तो अपन ईर्ष्या की प्रतिक्रिया। दूसरे को मारपीट करने की अपेक्षा उससे मित्रता रखने की प्रतिक्रिया करेंगे, किसी को सताने की अपेक्षा उस पर दया भाव रखने का अभ्यास करेंगे, क्योंकि मेरे आदतों को मुझे सामायिक के समय बदलना है। मेरे भीतर एक व्यक्ति थे कटनी में, देखो जिसको करना हो सो फौरन कर लेता है, समझ लेता है। उन्होंने मेरे से कहा कि महाराज आपसे मैंने मेरी भावना पढ़ने का नियम लिया था, सो मैं तो एक ही लाइन पढ़ता हूं दिन में 10 दफे। मैंने कहा कौन सी क्या बात हुई, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धर। कहले हमारे सामने दुकान खुली है एक और उसकी दुकान हमसे ज्यादा चलती, हमारे ग्राहक और कितने जान लगे, सो बड़ी ईर्ष्या होती मन में। लेकिन उसमें मेरी भावना में तो लिखा है कि देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव रखो। सो मैं निरंतर दुकान पर बैठा बैठा जब जब ईर्ष्या का भाव आता है कि जे ग्राहक आया वो भी वहां चला गया, सो उस समय विचार करता हूं कि मैं अपनी दुकान पर बैठ करके दूसरे का अहित विचार नहीं करूंगा, ईर्ष्या नहीं रखूंगा। और ऐसा करने से मुझे लाभ ये हुआ कि उस दुकानदार के प्रति मेरे सोच में कलुषता नहीं होने से वो दुकानदार जो सामग्री अपने पास नहीं होती तो ग्राहक से कहता है कि सामने भैया जी की दुकान से ले लो। कौन कहेगा हम ही दे देते हैं, कल ला करके रख लेंगे हम अपनी दुकान में, हमारी भी दुकान से ले जाइयो, दूसरे कहने जाइयो। लेकिन उसकी क्या प्रतिक्रिया, अपन जो क्रिया करते हैं वैसी ही प्रतिक्रिया होती है। अपन इस तरह से अभ्यास कर सकते हैं सामायिक के समय पर कि मैं तो निरंतर दूसरे के बारे में अशुभ विचार ना करके शुभ विचार ही करूंगा, चाहे दूसरे ने हमारा उपद्रव भी किया हो, हमारे काई में बाधा भी डाली हो, लेकिन मैं तो उसके लिए सुधरने का और अच्छे बनने का ही भाव रखूंगा। मैं उसके प्रति अपने भावों को कलुष क्यों करूं। महापुरुषों की प्रवृत्ति तो यही है भैया। कुंती महारानी जो कि पांडवों की माता जी थी, दुर्योधन ने पांडवों को वनवास दे दिया, जुआ में हार गए, इतना सब संकट पैदा किया कौरवों ने, लेकिन विदुर के घर में कुंती रुकी हुई है। एक दिन विदुर से कहती है कि मैं दुर्योधन से मिल के आऊं महल में, तो विदुर कहते कि अरे वाह, उन्होंने तुम्हारा इतना उपद्रव किया, इतनी बाधाएं डाली, इतनी तकलीफ पहुंचाई और उनसे मिलने जा रही हूं, तो क्या जवाब देती हैं, मैं उनका प्रेम पाने नहीं जा रही हूं, लेकिन उनके प्रति मेरे मन में द्वेष ना आए इस द्वेष भाव को दूर करने जा रही हूं। मैं इतनी गई रीति नहीं हूं कि अपने प्रति द्वेष रखने वाले से भी प्रेम ना करूं, उस पर दया ना करूं। दुनिया तो अपने से द्वेष रखने वाले के प्रति द्वेष रखती है। विर्य लोग हैं जो सामायिक का अभ्यास करते महापुरुषों की तरह, जिनकी प्रवृत्ति बनाने के लिए प्रयत्न रहता है, वो अपने आदतों को अपनी प्रतिक्रिया सौहार्द पूर्ण करने के लिए हमेशा दूसरे के कल्याण का ही विचार करते हैं। अकल्याण का विचार करके अपना मन कलुषित नहीं करते। हमारे दूसरे के बारे में अकल्याण का विचार करने से जरूरी नहीं है कि दूसरे का अकल्याण हो ही जाए। बुंदेलखंड में तो कहावत है कि कौवा के कोसे से ढोर नहीं मरत है। जानवर अपनी आयु से मरेगा, जिस व्यक्ति का भी अहित होगा उसके अपने पाप के उदय में होगा, मेरे चाहने से नहीं होगा। मैं उपद्रव कर सकता हूं लेकिन उसके लिए जब तक आसाता का उदय नहीं होगा तब तक बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। रामचंद्र जी की मृत्यु के लिए रावण ने कितने उपाय किए, बहुरूपिणी विद्या साधी, शांतिनाथ जिनालय में बैठ करके शांतिनाथ भगवान का पाठ किया, लेकिन क्या बिगाड़ पाए वो रामचंद्र जी का, लक्ष्मण जी का? खुद अपने लिए नरक निर्मित किया रावण ने। आज अपन उनका उनके अवगुणों को लेकर के उन पर थू थू करते हैं। कौन लेता उसका नाम श्रद्धा से भक्ति से, लेकिन रामचंद्र जी का नाम तो अपन आदर्श मान करके, आदर्श राजा मान करके लेते हैं। उनको मोक्ष हुआ इस बात से अपन उनके गुणगान करते हैं। सो भैया, प्रतिक्रिया अपनी अपने मन को कलुषित करे ऐसी ना हो। दूसरे का घाटा हो वो कब होगा? जब मैं अपने मन को कलुषित करूंगा तभी दूसरे का घाटा होगा। तो दूसरे का तो बाद में होगा, मेरा तो पहले ही हो गया घाटा। एक बार नामदेव जी एक संत हुए हैं, उनके बचपन में उनकी मां ने किसी औषधि के लिए उनसे पेड़ की छाल लाने के लिए कहा। सो कुल्हाड़ी लेकर के पेड़ की छाल निकालने के लिए चले। अब जब पेड़ की छाल निकालने के लिए उस पर कुल्हाड़ी का प्रहार किया तो उसी क्षण उनके मन में विचार आया कि अरे पेड़ भी तो जीव है, उसे भी तो कुल्हाड़ी का प्रहार करने से तकलीफ होती होगी। लेकिन कैसी होती होगी, ये तो वो कहता ही नहीं है, बोलता ही नहीं बेचारा। मैं महसूस कैसे करूं कि कैसी तकलीफ होती है, मैं तो महसूस करूंगा। अब अनुभव तो तकलीफ का पेड़ की तभी हो सकता है जब जैसी कुल्हाड़ी पेड़ के ऊपर चलाई है वैसी अपने पैर पर चलाएं। सो इतना विचार आते ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी चला ली। बताइए, अपनी जंघा छील ली उन्होंने, जैसे कि छाल पेड़ पर से उतार रहे थे वैसे ही अपनी खाल भी उतार ली। बड़ा तकलीफ हुई, लहू लुहान हो गया पूरा पैर। अरे भाई, इस कारी में तो बहुत तकलीफ होती है, देखो मुझे इतनी तकलीफ हुई, ऐसे ही तकलीफ तो वृक्ष को भी हुई होगी। सो बिना छाल लिए लथपथ खून से वापस लौटे। मां तो घबराई कि कहीं गिर गए हैं, किसी ने मार दिया क्या। सो पूछा कि इतना सारा तुम्हारी धोती भीग गई है रक्त से, क्या हुआ, कहीं गिर गए, किसी ने मार पिटाई कर दी क्या? नहीं मां, इतना ही कहूंगा कि मेरे से तुम औषधि के लिए वृक्ष की छाल मत मंगाया करे, उस वृक्ष को बहुत तकलीफ होती है। अब बताओ, ऐसा दया और करुणा का भाव। जब सारी घटना बताई कि उसे कैसी तकलीफ होती होगी ये महसूस करने के लिए, मैंने सोचा कि मैं अपने पैर को छील करके कुल्हाड़ी से देखूं, तब मुझे एहसास होगा कि हां सचमुच ऐसी पीड़ा होती है। सो मैंने वही किया, किसी ने मुझे गिराया नहीं, किसी ने मुझे मारा नहीं, मैंने ही ये किया है इस अनुभव के लिए कि कैसा दुख होता है। भैया, अपन भी किसी से कुछ कहने से पहले उस जगह अपने आप को खड़े करके देखें कि हम होते ये जगह पे तो क्या करते। अपने आप महसूस हो जाएगा कि कैसा सुख दुख का एहसास हमारे कारी से सामने वाले को हो सकता है। इस तरह अपन सामायिक में देखो, 100% तो कोई सफल नहीं हुई है, हम केवे तो हम ही नहीं है सफल। अपन सब जने सीख गई तो निकली अपनो जीवन अच्छा बनाने के लिए। सो 1% भी अगर अपन सफल हो गए तो जी अभ्यास करें कि अभी तक तो मेरी आदत, मेरा ऐसा स्वभाव बन गया है, लेकिन मैं उस स्वभाव को, अपनी आदत को बदलूं और और इस तरह से सब जीवों के प्रति कल्याण का भाव रखूं, मैत्री का भाव रखूं, अपनी प्रतिक्रियाएं और अपने विचार इस तरह से हम आसानी से सामायिक में अभ्यास करके और बदल सकते हैं। सामायिक की सार्थकता इसी में है कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं को और अपने विचारों को, अपने आचरण को, अपनी आदतों को बदलने का अभ्यास करें और अच्छी जो आदतें हम समझते हैं, जो हम दूसरे से भी अपेक्षा रखते हैं, वैसी ही अच्छी आदतें अपन अपने भीतर संग्रह करें और जो बुरी आदतें, खोटी आदतें हैं, उनसे धीरे धीरे मुक्त होते जाएं। भैया सामायिक तो इसीलिए की जाती है इसी भावना के साथ में कि अपन भी सामायिक में ऐसा अभ्यास करके अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि।
के गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो, अर्ध दिशा का सन्नाटा वन में वन चारी चढ़ते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, करते शैल नदी तट पर तरु तल पर साकी घड़ियों में समतारस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में अंतर ज्वाला भरती वाणी मानो झड़ती हो फुलझड़िया, बंधन तर तर टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां, तुम सादानी क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अभिनय शर्मणिया, हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम,
उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु स्वदीप सुगुरु फल अवगे, धवल मंगल गानर वाकुल
गहे निनाज महमुनि।
ओम दी परम पूजाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, परम पूज मुंशी क्षमा सागर जी महाराज, परम पूज मुंशी भव्य सागर जी महाराज के चरणों में आनंद प्राप्त
करी है,
समुद्र विजान को बंद विधि भान को स्व पर पिछान को परम प्रमाणी है,
जीवों के जताए वे को कहूं न स
भरे हुए हमारे सभी साधारणी बंधुओं को, बहनों को, माता बहनों को निवेदन है कि वे महाराज श्री की आहारचर्या के उपरांत भोजनालय में भोजन करने के लिए अवश्य पधारने की कृपा करें। वे कृपया हम सबका आतिथ्य अवश्य स्वीकार करें।
आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि कल तक तो अपना भोजन उठा रहे थे, आज अपना राजा बना दिया हमने, तो अब दोनों कंधे हमारे कंधों पर खड़े होकर के और उतरने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये बड़ा अजीब लग रहा होगा। उसने क्या जवाब दिया उस लकड़हारे ने? बोले कि मेरा दायित्व है कि मैं राजा हूं, राजा के लिए तो कौन आवश्यक है, उसके मंत्री, ये उसका कर्तव्य है। मेरा दायित्व है कि मैं राजकीय ठाट बाट से रहूं, और मेरा कर्तव्य है कि मैं तो नया रहा हूं, मेरे कर्तव्य को तो आप दोनों को ही करना है। दोनों के कंधे पर इस राज्य का भार है। आप ज्येष्ठ मंत्री हैं, बड़े मंत्री, तो आपको सम्मान भी दिया, लेकिन राजा अपने आप नीचे नहीं उतरेगा, राजा मंत्री के कंधे पर हाथ रख के उतरेगा। ये दायित्व का बोध भी उसके लिए बताइएगा। एक लकड़हारा होकर के राजा बना देने के बाद उसको दायित्व बोध भी था, कर्तव्य बोध भी था। अपन मनुष्य है ना, अपन को दायित्व बोध का ध्यान है ना, अपन को कर्तव्य बोध का ध्यान है। भैया सबको अपना मनुष्य होने का दायित्व, और अपना चाहे पिता हो, चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, इसका कर्तव्य का निर्वाह, इसका बोध अपन को होना चाहिए, तब तो अपना मन स्वस्थ कहलाएगा। इसी भावना के साथ कि अपन जैसे अपने शरीर के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, ऐसी ही चिंता अपने मन के स्वास्थ्य की भी करें और अपने मन को स्वस्थ बनाएं। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, मन स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिव्य दर्शन करने वाला है। अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो।
जी।